November 13th morning.
যাদব মহারাজ নিকটে তিনি তাকে ఉపనయన మాత్రం కూడా ఆయన కొట్టండి. ఆ పవన్ మహారాజు విషయం ఏంటి, 50-60 జన్కి కొత్తలు జేనేచీలు దాచున్న రన్నా కొడతాయి, రన్నా కొడతీ వకీల్ బజార్ కాన్ కొడతాయి, రన్నా కొడతాయి అబర్ వకీల్ కాచే ఫైల్ లియ గేతే అబర్ కోర్టే దితిని జేలేతే తాహ ప్రసాద్ దియ గేతే సబ్ లోగ. তারপরে যখন বাগবাজারে গৌড়ীয় মেদান সমিতি স্থাপন করা হল তখন বহু লোক গুরু মহারাজ কাছে আসত, রান্না ইনি করতেন, সব সেবা কাজ করতেন, আরো দু একজন লোক সাহেব এক সময় তাহলে 104 কি 103 ডিগ্রি জ্বর. আর সব বৈষ্ণব রাজেছে আইনি অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তখন গুরু মহারাজ এখন আর জ্বর টর চলবে না, এখনই গিয়ে রান্না করে ওই 103 ডিগ্রি জ্বরেতেই একবারে চলে গেলেন. আর যে রান্না টান্না করে পরিবেশন করে খাওয়াইয়েছে তারপরে জ্বর নিজে থেকে চলে গেছে. এরকম ভাবত আমি তার থেকে উনি প্রথমে এসেছেন, তারপরে পূজ্যপাদ দীক্ষা মহারাজ, তারপরে আমি এসেছি, কিন্তু এই দুজন লোক আমাকে সম্মান দিত, আমি তাহাদেরকে শিক্ষা গুরু নতুন পূজ্যপাদ বামন মহারাজের কোন শিষ্য কোন কিছু নিয়ে যেত যে আমার এই অসুবিধা আমি জানি না নারায়ণ মারে আমার পরামর্শ ছাড়া কোন কিছু করতে মন্ত্র দীক্ষা দিতে হলে প্রথমে এসে আমার ঘরে আমার কাছে অনুমতি নিয়ে তিনি শুধু বাইরে গিয়ে প্রচার ইত্যাদি করতেন তিন তিন ঘন্টা পর্যন্ত অনর্গল তিনি বলতেন মধুর ভাবে খণ্ডন করতে হতো তাহলে মধুর ভাবে খণ্ডন এইরকম ভাবে এত সহিষ্ণু অর্থাৎ অধিক সহিষ্ণু আমাদের মতো লোকে মান সম্মান তিনি সবার সোসাইটিতে নিজে বলতে চাইতেন না আমার মধ্যে আপনি বহু সম্মান দিয়ে ঝগড়া হলেও ছেলেদের সঙ্গে পরস্পর আমার কাছে পাঠায় বুঝে পারতে বিক্রমারাজ তাকে আমি শিক্ষা করে মনে করতাম, কিন্তু অদ্ভুত তারা আমাকে এত সম্মান দিতেন. এইরকম ভাবে তাহাদের বহু গুণাবলী বিক্রমারায়ণ কাছ থেকে আমি কীর্তন শিখেছি, পাঠ করতে শিখেছি, ভিক্ষা করতেছি, তার সঙ্গে ভিক্ষা দিতাম, ভিক্ষা করে কলকাতায় নিজের দিকে এইসব তাদের কাছে এই প্রথমে মানুষ হয়েছি, তাদের ঋণ আমি শোধন করতে পারব না. অতএব তার সম্বন্ধে আর কি বলবো, তার সেবক রাজে তাহাদের অনেক মনে আছে আমি ভুলে গিয়েছি, অতএব তাহারাই বলবো. আমাদের যত পাবন মহারাজের শিষ্য তার মধ্যে সবচেয়ে প্রথমে হরিদাস, এখন তার নাম কি ভক্তি মহারাজ, আর তার সম্বন্ধে জানে আর ত্রিবিক্রম মহারাজকে শিক্ষক আমি তার কাছে ত্রিবিক্রম মহারাজকে কেউ থাকত না, একে বলে দিয়ে নবদ্বীপে বুঝিয়ে ত্রিবিক্রম মহারাজ কাছে জুড়ো পাঠিয়ে তার সেবা দ্বারা তাহাকে বশীভূত করেছিল আর তাহাকে শিক্ষা এমন দিয়েছিলেন যে সে এখন ভালো বক্তা. আমি তাহাকে নির্দেশ দিয়েছি সে পূজ্যপাদ পানু মহারাজ আর পূজ্যপাদ বিক্রম মহারাজের সম্বন্ধে কিছু বর্ণন করে তাহার চরণেতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে. তবলা বাজাইতেন, ঢোল বাজাইতেন, ভালো কীর্তন করতেন। আর হ্যাঁ হ্যাঁ তবলা ইত্যাদি সবই বুঝে যাবে, নানা রকমের সুর তাহার রয়ে মানছে না। তাছাড়া সত্য বক্তা ছিল, মুখের উপরে তো সত্য বলতে বাংলারা মৃদু ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে, আর এমনি একেবারে সত্যে মুখের উপরে বলতে, কারো কোনো দোষ দেখলে তাহাকে একেবারে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে। এরকম হওয়াতে বহু তাহার গুণ, আজকে বহু গুণ সব তাহার স্মরণ করিয়ে দিল পরিবার। এখন ভক্তি বেদান্ত শ্রীমান ভক্তি বেদান্ত মহারাজ তার সম্বন্ধে বলতে পার, ব্রহ্মার সম্বন্ধে মহারাজ সম্বন্ধে
के वचन से ही मैंने वचन दिया कि हाँ मैं आऊंगा किस दिन।
बत्तीसवें दिन में निकल के आया, सीधा सीधा रात को ही मैं महाराज जी के चरणों में उपस्थित हो गया, दीवानों में हो गया। अब तब से मैं महाराज जी के चरणों में ही रहा और उन्हीं का कृपा आशीर्वाद से इधर प्रीति जो कुछ भी है जीवन में ही आज फलता फूलता हुआ, हमारे जीवन के साथ और उन्हीं के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त होता। महर्षि ने ये दिन जबकि हमें गुरु जी के चरणों में ले जाकर के बोले कि आप मत तो दीजिए, तो मत तो दिलवाया। फिर मैंने इनसे भी मंत्र ग्रहण किया। लोगों में विवाद और संशय बना रहा कि ये कौन से गुरु की बात करता है, किसकी बात करता है, समझ में नहीं बैठता किसी को। और मैं जानता हूं हमने तो दोनों से ही मंत्र लिया, दोनों ही हमारे जीवन में आराध्य हैं। और संन्यास का मंत्र आज सभी को दोनों से ही प्राप्त है। और जीवन में हमने देखा श्री गुरु महाराज जी से पूछा कि गुरु जी मैं तो महाराज जी के पास में रहता हूं, जो कुछ उन्होंने सिखाया पढ़ाया, जो कुछ पढ़ा रहे हैं सिखा रहे हैं हम सीख रहे हैं, परंतु हमारी विशेष इच्छा होती है आपसे कुछ ज्ञान लेने की। जो आप इतने बड़े वेदांत और इतने अगाध पांडित प्रतिभा के संपन्न हैं, तो मैं आपसे कुछ और सीखना चाहता हूं। उन्होंने एक वचन दिया, एक की बात कही कि महाराष्ट्र की और मेरी शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं है, उनसे जो प्रसिद्ध हो वही मेरी शिक्षा है। इसमें पृथक ना तो कभी पृथक देखना ना कभी पृथक सोचना, उनकी सेवा ही मेरी सेवा है और उन्हीं के साथ में जीवन बना। जब शुरू शुरू में आया तब नवद्वीप के भंडार में लग गया, भंडारी बन गया। दो साल बाद में महाराज से जबकि वहां के सेवा भार वहां संभाल करके उन लोगों को समर्पित करते हुए मथुरा में आए, तो महाराज की आज्ञा थी, अंतर बहना थी, एक महीने बाद में तुम आ जाना, मेरा मन हुआ किसी भी प्रकार से नहीं करता। जबकि गुरु जी ने चार महीने तक चार घंटे तक एक दिन समझाया और बोलते ही चले गए, चार घंटा पूरा एकदम बोलते जा रहे। मैं खड़े खड़े सुना। अंत में गोपीनाथ जनार्दन महाराज वे बोले कि महाराज अभी तो आपको जाना है, गाड़ी पकड़नी है, तो आप विलंब क्यों कर रहे हैं, अभी तो एक घंटा टाइम ले लिया, प्रसाद लीजिए और गाड़ी पकड़ना है। अब आप बोलते जा रहे हैं चार बजे से, शाम को चार बजे से आठ बजे तक पूरा बोलते हैं। तो गुरु जी ने मुझसे पूछा, तुम मैंने चार घंटा बताया, तुमने एक भी शब्द नहीं किया और न बोला, तुम्हारा क्या राय है, तुम क्या बोलना चाहता है बोलो। मैंने कहा मैं जीवन में न महाराज जी को भूल सकता हूं न भूल पाना, और न तो मैं मन से हटा सकता हूं। तब गुरु जी बोले ठीक है, जब हमने चार घंटा समझाया तुम्हें इतनी बातें, तब तुम जा। उन्होंने फिर से कहा कि तुम आएगा जल्दी, जल्दी आ जाएगा दो महीने बाद। तब मैंने कहा कि हाँ गुरु जी अवश्य आऊंगा, कभी भी आपको नहीं भूलूंगा और महाराज जी का छोड़ूंगा। इसी के साथ उन्होंने कृपा आशीर्वाद दी और उन्होंने मथुरा में भेजा। फिर उन्होंने भी किराया लेकर के बोले कि जाओ, तो मथुरा जाओ महाराज। तो जबकि उनके विषय में महाराज जी ने अभी वर्णन किया है और उनको जीवन भर वही देखा कि वेदांत के अद्वितीय धुरंधर विद्वान वेदांती, कभी कोई पूजा की बारी आती है लोग कहते हैं तुम पूजा करता नहीं है, पूजा करने नहीं जाता, अरे भैया क्या पूजा करूं, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा, फूलों का ढेर लगा दूं, कमरा भर दूं, उसमें भी तो पूजा नहीं होगी, वेदांत पुरुष को कौन से वेदांत के द्वारा पूजा करूं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। क्या था? तो वैदांतिक पुरुष थे, जब कभी हम लोग जाते थे तो ऐसे ऐसे शास्त्रों की बातें करते जो हम आश्चर्यचकित हो जाते, कहां कहां से श्लोक बोलते। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि गुरु जी आप इतना श्लोक कहां से सीखे? तब उन्होंने बताया कि जितने भी किताबें निकलती है सारे किताबों के लिए ये एक प्रमाण ढूंढना पड़ता था, और उसके लिए गुरु जी बोले कि मैं मिर्जापुर गया, लखानपुर है तो वहां जाकर के लाइब्रेरी में एक एक करके सारे किताबों को छाटता था और एक एक करके पढ़ता था। तो एक एक किताब शुरू से अंत तक संपूर्ण मेरा पढ़ना हो जाता और एक बार देखने से हो जाता, इसलिए सभी को किया। तो इस तरह से संपूर्ण याद है। जबकि हम महाराज के पास में आए और सिर पर हाथ रख करके उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया था, उस समय का आशीर्वाद जो कि उसी समय हम प्रतिदिन एक एक बाल्टी पानी के एक एक बाल्टी पानी में एक एक श्लोक 50-60 बाल्टी पानी भरना पड़ेगा तो 50-60 श्लोक एक साथ में याद करके महाराज को 7 बजे सुना। तो अब गुरु जी का आशीर्वाद हम लोग यही देखते हैं, उससे पहले हम एक श्लोक भी याद नहीं कर पाते थे तो आधा भूल जाते थे बोलते समय, और उस समय हंसी होती थी हरे तर कंपा डडन। मैं भी ये भी नहीं समझता था हरे तर कंपा डडन का मतलब क्या है, क्या बोल रहे तो हंस रहे। और फिर हमने देखा गुरु जी की कृपा आशीर्वाद क्या होता है। वेदांत ने कहा है नाम आत्मा प्रवचन ही न लभ्य, भगवान श्री हरि प्रवचन के द्वारा, मेधा के द्वारा, पांडित्य के द्वारा कभी मिलते नहीं। मिलते हैं जब कभी गुरु जी की सेवा करता है और समर्पित हो जाता है। और वैदांतिक शिक्षा में यही बातें हैं कि गुरु क्या देखते हैं कि एक सेवक छात्र या शिष्य कितना समर्पण करता है, तो उसके समर्पण से ही पता चलता है कि कितना समर्पित है। ये नहीं देखते हैं गुरु जी, ये नहीं देखते हैं महाराज से, ये नहीं देखते हैं कि कौन कितना रुपये दिया, कौन कितना धन दौलत दिया, कौन कितना क्या दिया और कौन कितने सेवा, पर देखते हैं उसके स्वरूप निष्कपट वृत्ति, कितना समर्पित आत्मा है। जब यही समर्पित आत्मा हो जाता है और सरल निष्कपट वृत्ति को देखते हैं तब गुरु का आशीर्वाद कृपा बनती है। गुरु जी कहते थे बिना गुरु की कृपा के भगवान की कृपा कदापि संभव नहीं। गुरु जी के भाषण का एक ही उद्देश्य रहता था, हमेशा एक ही बात कहते थे कि वैष्णव धर्म अनुगत्य का धर्म, वैष्णव धर्म अनुगत्य का धर्म, जिस दिन अनुगत्य छूट जाएगा उस दिन भजन साधन समाप्त हो गया, और यदि अनुगत्य में रहा तब सभी कुछ संभव है तो भजन में आगे बढ़ेंगे। अनुगत्य में ही हो करके कभी भजन साधन नहीं हो सकता है। यहाँ पर गुरुवानुसार और वहां पर जाकर के ऊपर ऊपर के जितने भी सखी मंजरिया सबके आश्रय और अनुगत्य में ही जाना पड़ेगा, तब राधा माधव की सेवा होगी और अन्यथा सेवा नहीं। अतः अनुगत्य वैष्णव धर्म का मतलब है कि अनुगत्य वह धर्म, इसलिए प्राय करके राजपंच अध्याय के उस श्लोक का वर्णन किया करते थे। प्रत्येक भाषण में ही देखा जाता था श्रद्धान्वितो अनुश्रेणुया अथ वर्णनीय, श्रद्धा युक्त हो करके अनुश्रिया अनुअनुगत्य में श्रीनिवास पहले गुरु मुख से श्रवण करें, गुरु की सेवा करें। उन्होंने अपने जीवन में गुरु की सेवा का आदर्श दिखाया। आज बहुत से लोग हम लोग भजन करने आए हैं और सेवा से हम दूर भागते हैं, अपने को छिपाते हैं कि हम क्यों करें, दूसरे कर रहे हैं, दूसरे मर रहे हैं, हम क्यों करें, हम अपने बच्चे पाने के लिए हमेशा प्रयास करते। पर गुरुवर्य के जीवन में देखा जाता है जीवन समर्पण किया सेवा के लिए, मन मिटा दिया, अंगुली कट गई तो भी सेवा में नहीं, पर सभी लोग रो रहे हैं, दुखी हैं, कभी भी सेवा से
বলছি ইয়া দূর ট্রিকি আর জীবন ভর সেবা মে না করে এই প্রকার গুরু কি সেবা করতে আর নবদ্বীপ দেবানন্দ গৌড়িয়া ম্যাম কে লিখা রহতা থা গুরু কি সেবা দেনে ওয়ালা ব্যক্তি হি ভগবান কো সমজ পায়েগা আর উনকো উনকি কৃপা অনুভব কর সকতা হ্যা অন্যথা ভগবান কো কোই নাই অনুভব কর সকতা गुरु जी ये भगवान को दर्शन करता है कान से आंखों से नहीं सारी बातें लिखी है और गुरु जी का ये कहना था कि हरि गुरु वैष्णव तीनों का अनुगत कि हरि को छोड़ करके गुरु नहीं गुरु को छोड़ करके वैष्णव नहीं जो कोई व्यक्ति वैष्णवों का सम्मान नहीं देगा वो गुरु का सेवक नहीं बन सकता गुरु जी कहते थे बोले देखो कांडारी भंडारी और पुजारी गुरु सेवक और भंडारी और मंदिर के पुजारी ये तीनों व्यक्ति बहुत जल्दी ऊपर उठते हैं और बहुत जल्दी ही नीचे गिरते हैं जितना जल्दी ऊपर उठते हैं उतने ही गिर जाते हैं और जो कोई व्यक्ति बड़े सावधानी से रहेगा तो उसको अभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। पहले मैं जब भंडार में था तो नवद्वीप में खूब बिगड़ता था छोटा बच्चा था उस समय और खूब बिगड़ता था सभी लोग डरते और नहीं तो कंप्लेन हो जाता था शिकायत कर देते तो सभी डर जाते थे तो एक दिन गुरु जी के पास में पहुंचे तो खबर पहुंचा तो गुरु जी ने कहा कि देख तुम्हारा सब सही है तुम बिगड़ जाता है तो बहुत जल्दी बिगड़ता है तुम मेरा स्मरण करना जब तुम्हें बिगड़ना होगा उस समय मुझे स्मरण कर लेना तब तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा बिगड़ना नहीं क्योंकि ये सभी वैष्णव है सबके प्रति आदर करना सबको सम्मान देना तो इस प्रकार गुरु जी जब कभी हम लोग जाते थे कोई न कोई नई नई बातें अवश्य सिखाया करते गुरु जी के जीवन में एक अभिलाषा थी उन्होंने एक दिन कहा कि परम गुरु महाराज जी के समय से ही बोले कि वेदांत पर लिखने के लिए बहुत प्रयास किया सबका जीवन हमारा प्रचार में इधर उधर में समय निकल गया हम लिखने और इस पर हम चाहते हैं कि राधा पर व्याख्या हो तो हम समझते लिखने कि ये राधा पर व्याख्या आएगी कैसे और होता ही नहीं है और समझ में नहीं आता पर तो एक जगह देखा कि ऋग वेद के मंत्रों में लिखा गया 250 मंत्रों में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है एक भागवत की टीका का ये एक भागवत में ऋग वेद और यजुर्वेद से श्लोक दिखाया उस पर उसने जैसे बोले कि ये इस पर लिख दो अर्थ लिखो तो बैठे बैठे यही लिखते लिखते देखा कि उस वेद उस मंत्र में बहुत सुंदर गिरिराज गोवर्धन के विषय में वर्णन किया हे गोवर्धन हे गोपेश्वर हे श्री कृष्ण आप हम सब को गिरिराज जी की पूजा में आप नियुक्त कर रहे हैं तो हम देवराज इंद्र की पूजा बंद करके आपकी पूजा करने जा रहे हैं तो उसमें ये वर्णन है कि हे गिरिराज जी आप हम सबकी रक्षा करें हमारे गोधन को वृद्धि करें अकाल मृत्यु न हो रोग बीमारियों से दूर रखें और हम सब आपके चरणों में शरणागत हैं फिर इस श्लोक में दिखा रहे हैं हे देवी सन्नो देवी हे देवी अर्थात हे ब्रज गोपियों हे श्री राधिके इतनी कृपा कर दें कि आपके जुगल चरणों में हमारा प्रेम हो आपके चरणों में हम हासिल इस तरह वर्णन तो गुरु जी सुनाया कि ये सब वर्णन है इसी प्रकार गुरु जी के जीवन में हमने देखा बहुत सी शिक्षाएं और बहुत सी प्रेरणाएं दी हम लोग जब कभी जाते थे बैठे बैठे पहले पहले हम सोचते थे क्या बोलते हैं केवल भूत तक हम सुनाते हैं क्या बोलते हैं तो एक दिन मैंने महाराज जी से गुरु जी से पूछा गुरु महाराज जब कभी आओ देखो कि आपके पास में यह भूत का गल्प होता है ये भूत की कहानी आप क्यों सुनाते हैं और कोई बात नहीं सुनाते गुरु जी बोले देखो ये जितने लोग बैठे हुए हैं इसको यदि मैं हरि कथा सुनाऊं और कुछ तत्व की बात सुनाऊं, ये सोने लग जाएंगे, ये उठ के भाग जाएंगे। अब जब कभी आए हैं बोले कुछ कुछ सुना, ये भूत की कहानी सुना दू हो करके हमेशा। ये सब महिलाएं और ये जितने किसी के दिमाग में कोई सिद्धांत थ्योरी इस विचार आता नहीं है, इसलिए इनको सुना करके करो क्या, और हंसी मजाक की बात सुना दे वो खूब खुश हो गया और चले गए। तो यही इस मैंने कहा गंजी मुझे ये भूत प्रेत का गप अच्छा नहीं लगेगा, अब मुझे कुछ सिद्धांत की बात सुनाएंगे। तो इस तरह से ये सभी बातें होती। मैंने कहा कि गुरुजी आप हमेशा सिद्धांत की बात तो बताएंगे, तो पवित्र आप भक्ति रस की कोई बातें आपने कही नहीं। तो बोले अच्छा तुम महाराज जिसे भक्ति रसामेश्वर से उज्जवल जीवनी आदि पढ़ रहे हो, इससे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। एक बार मैं सिलीगुड़ी में पहुंचा तो उस समय मैं और कृष्ण कृपा प्रभु हम दोनों जने मधुसूदन महाराज हम दोनों जने कमरे में आ गए। उस समय उनकी तबीयत कुछ खराब थी, जब तक ये सेवक ने मना किया कि गुरु जी आप बात करते हैं, कम से कम 3 घंटे तक बोलते चले गए और रसायित पर ऐसे रसायित पर बोल रहे हम भी चमक के दो जीवन में कभी बोलते नहीं। फिर एक दिन गुरु जी ने मुझको पकड़ा बोले कि ए, सभा में कभी रसायित का विवेचन मत करना, आपने सामने 2-4 जने के बीच में कभी कुछ विचार करो, कभी भी बोलो बाहर में नहीं बोलो। जब कभी कोई बात होती कोई सिद्धांत विषय लेकर के पहुंच गया, गुरु जी आप ही हमें कुछ बता दीजिए। एक बार जीव स्वरूप के विषय में पीछा, मैंने कहा गुरु जी मैंने तो महाराज से सुना और बहुत शास्त्र इधर उधर देख लिया, और जब कभी कोई काम नहीं होता महाराज जी पूछते हैं कि ये जीव तत्व में निकालो तो उस समय वेदांत कहीं ऊपर इधर कहीं भागवत की टीका तो सारा दुनिया तो हम ढूंढते रहते हैं और देखते हैं जगह जगह की बातें होती है। आप मुझे हमें सुनाई तो देखा कि मैंने देखा कि 4-5 घंटे तक बोलते जा रहे थे, 10-5 मिनट में बोल देंगे अपना वस्तु को अपना तो कुछ रखें, तो सारे किताब खुम खुम करके बोल रहे। मैंने कहा हो गया बस, और नहीं चाहिए इतना ही बस। उनको देखा गया जब कभी कोई बात हुई तो ऐसे ऐसे सिद्धांत के विचारों की बातों को हम लोगों को देने के लिए बड़े उत्साहित उत्सुक थे। जब कभी सनातन धर्म के विषय में विचार होता था बाहर में भाषण में सनातन धर्म पर बोलते थे और सारे आचार्यों के विचारों को खंडन करते थे। इस प्रकार हम लोगों को बहुत सारी शिक्षाएं दी उनकी अपार करुणा और अपार स्नेह और अनंत ममता आज भी हम सबके जीवन के साथ है, इसलिए आज हम लोग अभी भी जी रहे हैं और उनके कृपा के कारण महाराज के चरणों के आश्रय में हम लोग उनकी छत्र छाया में चरण छाया में हम लोग जी रहे हैं। इतनी कृपा करते हैं कि एक भी साधु तो नहीं बन पाएंगे पर मनुष्य बन जाए और क्या देना है भी जानते हैं, क्या होना है भी जानते हैं, जैसे भी चाहेंगे वैसे सुना।
और वो क्या है कि जीवन के जन अमित राधा पद दासी
ये जन से जन ये भावे सेवा में थाके अमित राधिका पक्षपाती सदा सबका ही है। जब कभी जाते तो सब हमेशा बोलते हैं
तो विकम पूज्यपाद विकम महाराज है और हमने बात ही बात होता है। वो बोलते हैं मैं खंडन करता, मैं बोलता तो वो खंडन करता। तो पूज्यपाद पवन महाराज जी इसमें वो कृष्ण के पक्षपाती, हम राधा जी के पक्षपाती, अंत में वो सामंजस्य कर चुके वही।
हाँ
अभी तो राधा को मुझे बात विक्रम महाराज तब शांत हो जाए। प्राय उनसे हमसे बात भी बात होता था किसी भी विषय में। जब रहेंगे सोनादी भाषण देंगे तो जरूर हमारे वृद्ध कुछ बोलेंगे और हम इसका विशेष करके त्रिविक्रम महाराज से हमसे समुद्र गढ़ी में बहुत बहुत विचार हो किंतु हमने देखा है हम उनको तो शिक्षा गुरु मानते थे किंतु त्रिविक्रम महाराज कभी कभी साष्टांग दंड और प्रणाम दूसरे करते ये लोग वैष्णव का आदर्श है गुरु सेवा के लिए प्राण प्रत्याग करने वाले ये लोग थे एक बार अम महाराज जी कहा प्रेस में चला गया कट गया यांगून गुरु महाराज सुनते ही दौड़ करके आए उनको रोने लगे और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में ले गए फिर हाथ ठीक करा करके उनके प्रति इतना उनको स्नेह था एक बार टीबी रोग हो गया लेकर के कहां चले गए हिमालय की तरफ में कहां और वहां पर उनकी चिकित्सा कराई पहले बहुत दुबले पतले थे बहुत दुबले पतले पीछे से वो फिर मोटे दाढ़ी के हो गए इस तरह से बहुत से स्मृतियां हैं पर वैष्णव आजकल लोग गुरु कारण करते हैं गुरु का आदेश ही नहीं पालन करते हम घर जाएंगे आप यदि ऐसा कहेंगे तो घर जाएंगे तो घर छोड़ करके आया ऐसे ही भगवान की कृपा हो जाएगी विक्रम महाराज हमसे बोलते थे ये आप आज जो सारे देश में प्रचार कर रहे हैं उसका एक मूल कारण मिल जाता है अपने गुरु जी की सेवा के लिए मृत्यु के मुख में आप चले गए टीबी रोग था अनंत प्रभु का और उनके मुख से सब समय रक्त गिरता था और कोई नहीं निकट में जाता था मैंने सेवा मांग करके जब मैं इसकी सेवा कर रहा हूं तो हमारे ऊपर में छोड़ करके प्रचार करने के लिए वो जाने लगे अंत में वो बचे नहीं किंतु गुरु जी की महिमा ऐसी देखी मरते समय में भागुदेव हा बाबा बाबा गुरु जी को बाबा का और राधा कृष्ण उनको वृंदावन में बुला रहे थे वृंदावन में बुला रहे हैं मैं जा रहा हूं मैंने कहा कि प्रभु आप तो जा रहे हैं हमको भी याद करें उनके चरणों में निवेदन करेंगे कि हमको भी बुलाए वृंदावन गुरु जी की सेवा का ये फल है निरक्षर कुछ नहीं जानने वाला गुरु जी की बस सेवा किया और गुरु जी के कृपा से वृंदावन में अजामिल की जदि गति है उस तरह से होती इसकी गति क्या होगी राधा कृष्ण साक्षात दर्शन देकर के वृंदावन में मुझको बुला तो भी लोगों को गुरु सेवा के ऊपर में श्रद्धा जो गुरु जी की सेवा नहीं करेगा आदर्श उनके आदेशों को पालन नहीं करेगा क्या फिक्र होगा बल्कि उल्टे उनको अपराध के कारण में नरक में जाना पड़ेगा इसलिए खूब सोच समझ करके गुरु सेवा करो गुरु भी सदगुरु होना चाहिए जैसा तैसा नहीं गुरु भी सदगुरु रसिक विद्वान पारंगत शिष्य के संदेह को दूर करने वाला शिष्यों से आदर्श ऐसे गुरु की सेवा करने से निश्चित रूप में इन दोनों में ये जब तक हम लोग तीन आदमी थे गौरीय वेदांत समिति ठीक रही और जहां वो लोग गए बस सब नष्ट भ्रष्ट होकर के चौक तो तुम लोग शिक्षा लाभ करो सहिष्णु बनो गुरु सेवक बनो और भजन जो गुरु सेवा नहीं करेगा उसको भजन नहीं हो गुरु सेवा इज ब्लैक बोन ऑफ इसलिए याद रखो गुरु जी के आदेश को उल्लंघन मत करना। जो शिक्षा देते हैं, आज 8 बज गया, शाम को बहुत से और लोग हैं, उनके शिष्य हैं, वो शाम को बोलेंगे हम लोग 5 बजे के पहले ही आ जाएं और बाकी सब लोगों को अवकाश मिलेगा कि वो भी उनके चरणों में पुष्पांजलि दे सकें। अभी हम लोग उन लोगों के चरणों में पुष्पांजलि अभी देंगे, उनका ये हो गया।
Just quickly, because we have to offer for Pushpanjali. So Shri Gurudev said that Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, he left in 2002, and Srila Bhavan Maharaj left 1 year after. So both of these, Srila Bhavan Maharaj and Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Gurudev says both of them are my Shiksha Gurus. Srila Bhavan Maharaj's mother was most religious, and Srila Bhavan Maharaj, Santosh Brahmachari, was her second son. So she came to the Gaudiya Math and gave her son in the hands of Sri Param Gurudev and said, I give it to your hands to offer to the feet of Srila Prabhupada. At that time his name was Santosh Brahmachari. At that time he was going to the Bhaktivedanta Institute. And every time he would learn a slope, then Param Gurudev would give him one topic. And every day he would learn 30 or 40 verses. He was most intelligent. If he would look at a verse one time, then he would remember it for the whole of his life. That time he was performing Vaishnava Seva, as the Vaishnavas would sit for Mahaprasad, then he would give them plates, give them salt, give them lettuce, give them chilies. And after the Vaishnavas had taken prasad, then he would clean the place. Then he served all the Vaishnavas, and all the Vaishnavas had so much affection to him. Upon the disappearance of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, the Gaudiya Math experienced many disturbances. At that time, Sri Param Gurudev left the mat and established Vedanta Samiti. At that time, he took Harinam from Srila Prabhupada and took Upanayan Samskar from Pujapadi Yaman and Maharaj. And afterwards, he took Diksha by Sri Param Gurudev. At that time, someone made a false case against Srila Param Gurudev. And Param Gurudev and 30 or 40 Vaishnavas were put in jail. At that time, Santosh Brahmachari, he took full responsibility for the deity seva, for collection, for cooking prasad, bringing the Vaishnavas in jail, arranging the court case. One time he had a very high fever of 103, and some Vaishnavas came. At that time, Param Gurudev said to Srila Santosh, so Santosh Brahmachari, oh, there's no time for fever now. There's so much seva to do. So quickly he stood up from his seva and cooked for all the devotees. Then Gurudev said, even though I respect it like Shri Guru, then both Srila Bhavan Maharaj and Srila Chilaka Maharaj used to respect me so much. If any disciple would come to Srila Bhavan Maharaj, then Srila Bhavan Maharaj said, I don't know anything. You go to Srila Narayan Maharaj. There was Srila Bhavan Maharaj, even if he would chastise someone, he would chastise them very, very, very sweetly. And even though he was Sabapati, the senior Vaishnava, then Srila Bhavan Maharaj would always make Gurudev and other devotees speak first. Gurudev said, Srila Bhavan Maharaj always had so much respect and affection for me. He said, Srila Bhavan Maharaj came first on the mat, then Srila Chivikar Maharaj, and then Gurudev said, last I came. Therefore, I learned everything from Srila Chivikar Maharaj. How to perform kirtans, how to sing, how to give pramachan, how to preach, how to collect. And Gurudev said, we would always find something to argue about in a loving way. Therefore, Srila Bhavan Maharaj, how he gave his life for the service of his Guru. One time in Bengal, they had the old-style printing presses. One time his hand was caught in the plate and his finger was cut. So Srila Param Gurudev, when he came there weeping, and took Srila Bhavan Maharaj on his lap and took him to Calcutta, to the hospital. One time also he had tuberculosis, and Srila Param Gurudev took him to the Himalayas. So Srila Chilukamaraj used to tell Gurudev, I know why you are so successful in your preaching, why people from all over the world are attracted to you. Because you went in the mouth of death for the service of your spiritual master. We know that history. Srila Prabhupada's first seva, his name was Sri Ananda Mohan Brahmachari. That time he had tuberculosis. Blood was always coming from his mouth. All the other devotees would stay very far away from him because he had tuberculosis. But Gurudev said, that time I took responsibility for his service. Srila Chandra Maharaj told that history to me also. But no one knows that Gurudev, by that seva, he also caught tuberculosis. But by the grace of Guru Gauranga, then Gurudev was saved. That time, Gurudev said, we can see the results of Guru Seva. Sri Ananda Mahaprabhu, when he was leaving his body, then he was calling his Gurudev, not Gurudev, but Baba, Baba, oh Father, oh Father. That time he was calling, oh, Nityananda is taking me to Vrindavan, Radha Krishna are taking me to Vrindavan. The Gurudev said, just see the glories of Guru Seva. Ananda Mahaprabhu could not write his name, he was completely illiterate. But at the time of leaving the world, Radha Krishna gave him direct darshan and took him to Vrindavan. Gurudev said at that time that he put his head on the feet of Ananda Mahan Brahmachari. Prabhu, now you are going to Goloka Vrindavan. You can make some reservations for me. So those persons who never, who these days so many people accept Guru but do not follow the instructions of Guru. If Guru gives them instruction, they say, oh, I'm not following this, I'm going back to my village. And Gurudev said, then for what reason you came to the mosque if you're not going to obey the order of the spiritual master? Therefore, if those who have no faith in the instruction of the spiritual master know that they follow his order, then what bhajan we will do? That bhajan is just a pretend. But Guru should be a sadguru. He should be completely expert in all the scriptures. That Guru should be able to dispel the doubts of his disciples. The Guru should be expert in everything and self-realize self. By serving that type of spiritual master, Bhagawan will be easily achieved. Therefore, Gurudev said, we have to learn how to tolerate, we have to perform Guru Seva, and we have to do our own bhajan. And we should never in dreams disobey the order of the spiritual master. Go Premanandi. And at 5 o'clock, we'll come together for